نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें रमज़ान के करीब किया और आज से जुमला 2022 में पहली बार बोल रही हूँ. कोई भी काम तब तक अच्छा नहीं होता जब तक हमारा जहन उसके लिए तैयार ना हो. इवन आप बैठी हो घर के कपड़ों में और कोई आपसे कहे आओ जल्दी करो शादी में जा रही हूँ तो मेरे साथ चलो, तब नहीं जाएंगे. आप कहते नहीं मैं तैयार नहीं हूँ. आप अच्छी से अच्छी काम के लिए भी जब तक तैयार ना हो, वो काम जिसमें आप बहुत इंजॉय भी करें, फिर भी आप नहीं जाना चाहते सिवाय एक शॉपिंग के. शॉपिंग एक ऐसा काम है कि औरतें तैयार ना हो फिर भी चली जाती हैं. ऐसे ही है तो रमज़ान की तैयारी जो है असल में हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है कि हम फिर अगले पूरे महीने के लिए अपने आप को जहनी तौर पर तैयार भी कर पाते हैं. और फिर साथ ही साथ हम ये भी करते हैं कि चलो अभी कुछ वक्त है प्लान कर लें. तो बस थोड़ा सा आज मैं आपका और अपना जहन बनाऊंगी कि रोज़े की असल क्या है. आपको अपने बच्चों के बहुत सारे सवालों का जवाब देना भी आ सकता है इससे सुन कर के, भाई हम क्यों रोज़े रखें. ख़ास तौर पे जो बच्चे और जो हम लोग वेस्ट में रहते हैं तो कभी कभी ये पिटी फीलिंग दी जाती है, मर्सी फीलिंग, वो बेचारे वो पिटी मुस्लिम्स रोज़े रखने हैं. फिर बच्चा भी कभी पूछता है, कोई सोचता है अच्छा वो इसलिए कि गुरबत है और गरीबों का ख्याल आ जाए. कभी सोचते हैं लोग कि अच्छा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बड़ी गुरबत होती थी इसलिए ये होता था ये होता था. लेकिन असल बात जो है वो क्या है, यानी सौमे रमज़ान हकीकत और उसके तकाजे, ये हमारा आज छोटा सा टॉपिक होगा जिसमें से इंशाल्लाह ताला हम इन चीज़ों को लेंगे कि किस तरीके से रोज़े रखने के साथ हमारी गुरबत का या हमारी बाकी चीज़ों का नहीं बल्कि हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का गहरा ताल्लुक है. तो इंशाल्लाह ताला हम इस सारी चीज़ों में से जो चीज़ सामने रखते हुए देखेंगे वो क्या है कि क्या वाकई मैं रोज़े की असल को जानती हूँ. तो इसके लिए सबसे पहले हमें खुद से एक सवाल करना पड़ेगा कि लफ्ज़ रोज़ा या फास्टिंग इंग्लिश में आप कह लीजिए, जहन में आते ही सबसे पहली क्या चीज़ आती है, और वो ये है कि खाना नहीं पीना नहीं. बचपन से ही हम सब ने रोज़े के बारे में ये तसव्वुर कायम किया हुआ है कि रोज़े का मतलब ये है कि खाना पीना छोड़ दो. असल में हकीकत ये नहीं है. हाँ रोज़े में खाना पीना छोड़ा जाता है लेकिन ये उसकी असल नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि रोज़ा अपने नफ्स को काबू में रखने का नाम है और कुछ ख़ास दिनों में एक ख़ास वक्त के साथ एक ऐसे मौके पे कि जहाँ अल्लाह ने फरमा दिया अपने नबी के ज़रिए तरीका बता दिया. हाँ अगर ये अलग बात है कि खाने पीने तक भी बात पहुँच जाए, यानी रोज़े में खाना पीना छोड़ा जाता है लेकिन सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम रोज़ा नहीं है. यानी अगर आपसे कोई ये बात पूछता है कि रमज़ान के रोज़े जो कि फ़र्ज़ हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये रोज़ा क्या बताता है कि रोज़ा रखने के बाद इंसान को अल्लाह की लगाई हुई पाबंदियाँ बर्दाश्त करने का, उसको समझने का मौका मिल जाता है. हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं कि जो सुनी सुनाई होती हैं. आप कोई भी इबादत करें, इस वक्त भी अगर आप में से कोई उठकर दो नफिल भी पढ़ने लगेगा हम सब देखेंगे, आप छुप नहीं सकते. अगर आप कोई सदका देती हैं, कुछ भी देती हैं, तो कम से कम किसी एक को तो पता चलेगा ना जिसको आप दे रही हैं. फिर इसी तरह से आप देखिए कि मगरिब की अजान का वक्त हो तो किसने नमाज पढ़ी किसने नहीं पढ़ी, कोई बंदा जो पास बैठा ऑब्जर्व करे वो जान लेगा. और देखिए आप दुआ करते हैं, आपके हिलते हुए होंठ हैं उनकी जुम्बुश से भी कोई ना कोई ज़रूर इस जान लेगा कि आपने कोई दुआ मांगी है. लेकिन रोज़ा एक ऐसी खूबसूरत सीक्रेट इबादत है कि जिसमें साथ बैठे को नहीं पता अब मैं खाना नहीं खा रही, जिसका ये तो नहीं पता कि मेरा रोज़ा है. ऐसे ही है ना, किसी का खाना ना खाना ये 100% इस चीज़ की दलील नहीं है कि वो रोज़े से आप कुछ भी ना खाएं. आप कुछ भी ना कहें लेकिन आप रोजे की नियत कर लें। ये वो हमारे यहाँ मसला है ना कि हम इसको देखते हैं कि जी किस तरह से सहरी में उठना, फिर पराठा खाना और फिर लस्सी पीना, दही खाना। हमारे यहाँ तो ये भी गुमान है ना कि शायद सहरी में पराठे ना खाएं तो रोजा कबूल ही नहीं होता, और समोसे और पकौड़ों बगैर तो मकरूह हो जाता है। ये हमारा ट्रेडिशन है, लेकिन असल में जो रमजान का रोजा है उसकी रूह बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास। मेरा मालिक मुझे देख रहा है, कमरे में गए, बाथरूम में गए, किचन में गए, कौन रोक सकता है आपको कि आप अपने अंदर कुछ पानी डाल लीजिए। खैर पता भी ना चले, लेकिन आप क्यों नहीं डालते? इसलिए नहीं डालते कि आपको पता है कि आपका रब आपको देख रहा है। यानी रोजा तकवा पैदा करने का वो खूबसूरत जरिया है जिसको आप कह सकते हैं कि शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, और रमजान के रोजों का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। तो जब अल्लाह सुबहान तआला ने आपको मुझे बेहतरीन तरीके से इस चीज की तौफीक दी है कि हम अल्लाह ताला की मर्जी को जान सकें, तो फिर उसके बाद तो हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। और असल आप रूह देखे ना, तो हर इंसान तो इंसान, बेजान चीज भी रोजा रखती है। आजकल आपके बाहर बिल्कुल खुश्क पत्ते दरख्तों पे हैं, बल्कि खाली डंडियां ही हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद आप यहाँ पत्ते देखेंगे, फिर फूल आएंगे, सब्जा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, है ना? जब ये सब कुछ आप देखते हैं तो इसका अंदर के रोजा है। पौधे भी सर्दियों में हाइबरनेट हो जाते हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग, मट्टी का एक पहाड़ है, तोता, खुश्क मट्टी जैसे, नहीं रेतली सी मट्टी होती है, और फावड़े से हथौड़े से कोई उसके ऊपर ऐसे उसके मट्टी को तोड़ रहा है, और उसके बाद आपको तो उसके अंदर से क्या निकलता है? मछलियां। वो एक नहीं सैकड़ों मछलियां। हुआ क्या कि जब कभी भी कहीं पानी सूखता है, ये अफ्रीका के जो इलाके हैं वहां आमतौर पे होता है, तो जब वो पानी खुश्क होता है ना तो वो मछलियां मट्टी में सो जाती हैं, और जहाँ इंसानों के पास खाने के लिए खाना नहीं और पीने के लिए पानी नहीं तो मछलियों को कहाँ से मिलेगा? तो वो कितने महीने उस मट्टी में सोई रहती हैं। फिर जब मौसम बदलता है तो वो बारिशें होती हैं ना, तो वो मट्टी के तोदे में पानी जाता है, तो वो पानी पी पी के मछलियाँ बाहर आती हैं। मैं उसको देख के सोच रही थी, अल्लाह ताला कभी दिल भी ऐसे ही होते हैं ना, बिल्कुल हमारे दिल सूखे होते हैं, खुश्क हुए होते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर कुरान की बारिश, कुरान का पानी पड़ता है और आपकी रहमत होती है और उसमें से बहुत कुछ निकलता है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह सुबहाना ताला हमारे दिलों के अंदर अपने वजूद का एहसास रखने के लिए कि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला हमें देख रहा है, अल्लाह इज वॉचिंग मी। आपके ये छोटे छोटे बच्चे, आपके 8-10 साल के बच्चे, अब आप इधर दर्स सुनने आई हैं, वो घर में क्या कर रहे हैं? अच्छा आप कैमरे लगा दें, अच्छा आप उनको के खबरदार कुछ करना नहीं, मैं देख लूंगी, अब्बू को बताऊंगी, फिर आप बड़ी बहन को उसके सर पे सवार कर दें कि अच्छा जरा देखना ये क्या करता है, बीवियां शोहरों के फोन चेक करती रहे, सब बेकार है। रोजा आपको मुझे ये सिखाता है कि कोई भी जब नहीं कोई होता पास तो अल्लाह पास होता है। तो जब आप रमजान के लफ्ज, और रमजान में खास तौर पर आज मैं रोजे की बात कर रही हूँ कि सौमे रमजान क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इस्लाम का पैगाम क्या है कि इंसान अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुक जाए, डोंट्स पे रुक जाए। जैसे अभी हम कितनी दफा रुके, रेड लाइट पे रुके, फिर स्टॉप साइन पे, अमेरिका में हम रुकते हैं, हम रुकते हैं ना? क्या आप यूके में रहते हुए किसी रेड लाइट पे चल सकते हैं? लाइट रेड और गाड़ी चल पड़े, चल सकते हैं? रात के अंधेरे में आप सफर कर रहे हैं किसी मेन रोड पे और बत्ती सुर्ख हो गई, तो क्या आप रुकते? ये रोजा है। यानी एक जुमला लिख लीजिए कि इस्लाम ये है कि इंसान अल्लाह की मना करदा चीजों से रुक जाए। रोजा हर साल हमें यही सबक देने के लिए फर्ज किया गया। ये हमारा ट्रेनिंग सेशन है। किसी भी अच्छे मुल्क में किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता जब तक कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना कर दे। बिल्कुल इसी तरह से रोजे का मतलब अल्लाह के लिए ख्वाहिशों पर रोक लगाना है, स्टॉप, ब्रेक, हैंड ब्रेक, ख्वाह रोक लगाने की फहरिस्त खाने पीने की चीजों तक पहुंच जाए। यानी खाना पीना एक सिंबल है, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, अलामत है एक बस, वरना अल्लाह को कोई परवाह नहीं थी, अल्लाह रोजे भी रखवा लेता और खिलाता पिलाता रहता। लेकिन वो एक किस्म की जाहरी चीज हमें दिख रही होती है कि हम खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, असल में रोज़ा क्या है कि जिस चीज़ से अल्लाह ने रोका आपकी ख्वाहिश कुछ और कहती है, अल्लाह कुछ और कहता है। दिल चाह रहा होता है, जब 12-1 बजते हैं तो भूख लगती है, फिर अंदर उठता है, और अगर कोई घर में बच्चों के लिए ऑमलेट पराठा बन रहा है, आपका दिल कर रहा है कि आप खा लें, कुछ कर लें करें, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैंने ख्वाहिश को रोकना है। 8, 10, 12 घंटे आप एक ख्वाहिश पे काबू पाते हैं ना, तो उससे आपके अंदर एक स्टेमिना डिवेलप होता है। तो रोक लगाना उसकी फहरिस्त खाने पीने तक पहुंच जाए, लेकिन असल चीज खाना पीना उससे रोकना नहीं है, ख्वाहिशों से रोकना है। और इसी तरह से अगर आप रोजे की एक और डेफिनेशन लेना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि रोजा इस बात का सबक देता है कि कभी कभी एक जायज चीज भी नाजायज हो जाती है और एक मतलूब चीज भी गैर मतलूब हो जाती है। खाना पीना जायज है ना, सहरी के बाद नहीं खा सकते रोजे की हालत में, और मगरिब से पहले नहीं खा सकते। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा कि रोजा इस बात की तरबियत है कि इंसान उन चीजों को छोड़ दे जिनको छोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और आज हम जायज चीजें छोड़ेंगे ताकि कल नाजायज चीजों से हमेशा का रोजा रख ले। देखिए ना, हर साल या 29 रोजे होते हैं या 30 रोजे होते हैं, क्या हर साल रमजान का आना जैसे पिछले साल था फिर आ गया? क्यों है? ताकि इंसान एक साल के बाद दोबारा इस बात को दोहरा ले कि नाजायज चीजों से मैंने हमेशा का रोजा रखना है, ताकि इस एक महीने में या कुछ दिन कमोबेश जायज चीजें भी छोड़ दूं। यानी एक सालाना तकरीब है, ये गेट टुगेदर है। और हकीकत है कि जिसको इस चीज का समझ आ जाता है ना, वो फिर ये जरूर मानता है कि रोजा रखने के बाद अंदर तकवा तो आता है। कोई लड़ रहा है आपसे, आपका दिल ही नहीं कर रहा जवाब देने को, कोई गुस्सा कर रहा है, आप कहते हैं करते रहो मैं क्या करूं। तो इस्लाम आपको मुझे क्या सिखाता है कि तरबियती कोर्स की तरह इसको लो। जिस बच्चे को आप दिन में 10 दफा रोके, ठहर जाओ, सही तरह बैठो, फिर बात करो, बच्चे बाहर जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भाई ने ये कर दिया, उसने ये ले लिया, उसने ये दे दिया, कर दिया ये वो, तो माँ अगर अच्छी हो ना तो कहती है पहले आराम से बैठो, सलाम सलाम कबल कलाम। अब एक बच्चा जो गुस्से में आया था, फुनकारता हुआ, छोटे भाई से लड़ता या बड़े भाई से लड़ता, जब माँ ने उसका सारा मुकदमा ही डिलीट कर दिया इससे पहले के सलाम करो, एक दिन वो जोश में आएगा, लड़ेगा, बोल रहा है, तो माँ कहेगी असलाम कबल कलाम, हदीस है छोटी सी के बात करने से पहले सलाम करो। अच्छा उर्दू में माँ क्या कहेगी? 1 मिनट पहले सलाम करो। क्या उसका वो मच मरेगा कि नहीं मरेगा? तो वो जब आके घर में सलाम अलैकुम कहेगा तो क्या वो उसके अंदर का जोश और जज्बा और जो गुस्से के जज्बात बाहर से आते हुए थे वो सेम रहेंगे? और जो माँ दिन में 4 या 5 दफा भी या 3 दफा भी ये काम कर दे, क्या उस बच्चे के अंदर एक ठहराव नहीं आएगा? हमारे असलाफ की माएँ अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों में इतनी गुंजाइश है कि आप अपने बच्चों को सुन्नतों का पाबंद करती जाइए, उनके आधे से ज्यादा मसले खत्म हो जाएंगे। तो क्या पता चलता है कि रोजा भूख और प्यास की सालाना रस्म नहीं है, बल्कि रोजा अखलाकी डिसिप्लिन की सालाना तरबियत है। कल शाम का जो लेक्चर था हमारा इसी सीरीज में, और ये आज हमारा यूके ट्रिप 22 का लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम इस दफा तामीर इंसानियत पे बात करें, करेक्टर बिल्डिंग। रोजा भी हकीकत में इसी बात का सबक देता है, और रोजा अपने आप को काबू में रखने की मशक है, खाने पीने में भी और दूसरे मामलात में भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई रोजे से हो और कोई शख्स आकर उससे झगड़ा करे तो क्या कहो? इन्नी साइम। आप में से किसी का नाम साइमा होगा? है तो बस इन्नी साइमा। कोई झगड़ना चाहता है, इन्नी साइमा। बेटे का नाम किसी का बच्चा हो तो बड़ा प्यारा नाम है, साइम नाम रखिए, रोजे रखने वाला। आप जब किसी के झगड़ने के जवाब में ये कहती है इन्नी साइमा, तो मैं रोजे से हूं, तो मुझे बताइए कि अगर इस अमल को आपने एक महीने में 7-8 दफा भी भुगत लिया तो क्या रमजान गुजरने के बाद ये कहना सुनना आसान नहीं होगा? और रमजान के बाद जब रोजा ना हो तो क्या कहे? इन्नी नजर तुले रहमानी सौमा। हजरत मरियम अलैहि सलाम प्रेग्नेंट हो गई, अल्लाह ने अपनी रहमत से बच्चा पेट में डाल दिया, अब वो बच्चा डिलीवर होने का वक्त आ रहा है। पहले तो दूर चली गई ना, मकानन कसिया, दूर चली गई, अब वापिस आना है तो कह रही है अल्लाह मैं क्या कहूँ, जब मेरे हाथ में एक बच्चा होगा, मैं वापस अपनी बिरादरी में आऊंगी, मेरा खानदान है, मेरे रिश्तेदार है, तो मैं क्या कहूँ उनको, कैसे सफाई पेश करूँ? क्योंकि कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं ना कि आपके प्यारे भी नहीं आपकी बात समझ पाते। अल्लाह ने कहा कहा था, कह देना इन्नी नजर तुलिर रहमानी सोमा, मैंने आज रहमान के लिए सोम रखा है, चुप करो सा, यदि मैं अपनी सफाइयाँ नहीं पेश करूंगी। और दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम रमदान। हर बात में आप सफाई पेश कर नहीं सकते। याद रखिए, माँ जिसने पेट में रखा होता है या बच्चा जो माँ के पेट से निकला है, वो भी एक दूसरे को 100% अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आप कहें ना कि आपके बच्चे कभी आपसे बदगुमान ना हो, या आप अपने बच्चों से कभी बदगुमान ना हो, ये नहीं होगा। बीवी शोहर से, शोहर बीवी से कभी बदगुमान ना हो, ये नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, हर रिश्ते में, हर ताल्लुक में, हर काम के करने के दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, थोड़ी सी बदगुमानियां भी हो जाती हैं। रोजा आपको मुझे क्या सिखाता है? थोड़ा सा टाइम ले लो, रिलैक्स्ड। दो झगड़ते बच्चों को ठंडा करो, पहले शेक हैंड कराओ, हग दिलाओ, अब बोलो क्या मसला है, मसला ही खत्म हो चुका होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब हम रोजे की बात करते हैं, तो हम सब वो मारूफ रिवायत जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बुनी अल इस्लाम यला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है, जिसमें अल्लाह तआला की गवाही देने से लेकर नबी सल्लम के रसूल होने की बात, तीसरी चीज उसमें नमाज है, और चौथी चीज जकात, और पांचवी हज करना, और अगली चीज रमजान का रोजा है। अब जब हम इस हदीस को सामने रखें तो रोजे की क्या हकीकत समझ आती है। माजरत के साथ एक बात कहूंगी कि आज हम नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज बराए नमाज, रोजा बराए रोजा, हज बराए हज, रिचुअल्स हैं, बस कर रहे हैं कर रहे हैं। हालांकि आप देखिए कि बुनियल इस्लाम फाउंडेशन, ये जो हॉल है ना, इसके नीचे बड़ी गहरी बुनियाद होगी, तभी तो इसके ऊपर आप एक और मंजिल भी खड़ी कर सकते हैं। तो जिन चीजों को अल्लाह के नबी ने इस्लाम की बुनियाद यानी स्तून, जब तो जब इस्लाम की बुनियाद कहा है, तो फिर रोजा बुनियादों में पड़ा है, क्या सिखाता है? हमारे यहां असल में किसी चीज की हिकमत मालूम करना या उसकी रियलिटी और उसकी रूह को लेना, इसकी आदत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी, आपके हाथ में सेलफोन है, मेरे हाथ में भी हो सकता है। अब फोन की एक जाहरी शक्ल है, जैसे आप देखें ये फोन है, अब ये ऐसे ही रखा हुआ है ना, ये टेलीफोन है, ये मैंने सफर में इस पे बड़े डार्क कलर का डाल दिया ताकि मुझे मिल जाए, इधर उधर ना भट्टे। अब ये इसकी जाहरी शक्ल है, अब इसमें सिम ना हो यूके की, इसमें वाईफाई कोड ना डला हो, तो मुझे बताइए क्या ये फोन एज अ फोन काम करेगा? नहीं करेगा। बच्चे को भी ऐसा फोन देंगे जिसमें टिक करने से वो रेड कलर का बटन ना खुल जाए और वो अपनी मर्जी की वीडियोस ना देख लें, तो उठा के फेंकते हैं। उनको चलता हुआ फोन चाहिए। क्या इस फोन पे किसी की बेल आएगी? नहीं आएगी। ये डेड है, जिसमें सिम नहीं लोकल कॉल नहीं आएगी, जिसमें वाईफाई नहीं उसमें कोई इंटरनेशनल, कोई आपका सोशल मीडिया की चीज नहीं आएगी। अब इसको समझिए, जब ये सब कुछ है, इस पे एक अच्छा सा कवर भी है, इसकी स्क्रीन भी है, इसका रंग भी है, इसके सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर वो नहीं है जिसकी वजह से इसको फोन कहते हैं, तो ये वो फोन नहीं है जो मतलूब है। अब इसमें सिम डाल दें, अब अल्लाह ना करे इसकी स्क्रीन टूट भी जाए, इसका कवर खराब भी हो जाए, फिर भी ये फोन तो रहेगा ना। बिल्कुल जिस तरह से हम सिर्फ फोन बराए फोन नहीं लेके, कि मैं हाथ में फोन लेके फिरूं, कोई शो के लिए पकड़ता हो तो होता हो, फोन बराए फोन नहीं, फोन बराए राबता, कम्युनिकेशन, अपनों से मिलिए, अपनों से राबता। आप कहीं जाएं और आपको कोई फोन करे, कोई ढूंढे, आपको मिलना है, आप अपने बच्चे को फोन देते हैं, कहते हैं स्कूल से निकलोगे, अगर कहीं होगे रास्ते में तो मैं कर लूंगी, तो क्या पता चला कि जब फोन राबते के लिए काम नहीं करता, तो वो फोन फोन नहीं होता, बस वो एक शोपीस होता है, ये एक मशीन है जिसके जरिए आप दुनिया के हर हिस्से से राबता कायम कर सकते हैं, आप अपनों से बात कर सकते हैं। यही मिसाल रख के पांच अरकान बुनियल इस्लाम जो है उसको भी रख के देखिए, इनमें भी रूह है, कि इस फोन की रूह सिम है, इस फोन की स्पिरिट या सोल, इसके अंदर वाईफाई कोड है या इसके अंदर पाया जाने वाला डाटा है। बिल्कुल इसी तरह से जब इबादत को हम जाहरी ढांचे पे तो इतना रखें कि मस्जिदें अलग कर ली हमने नमाज के तरीकों से, कोई रफुल जनान करता है कोई नहीं करता अलग, पांव जोड़ता है कोई नहीं जोड़ता अलग, कोई सजदा ऊंचा करता है, कोई नीचा करता है, अलग। और जो पढ़ रहा है नमाज, उसमें खुशू है कि नहीं, उसमें अल्लाह से राबता है कि नहीं, इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर है कि नहीं, नमाज बेहयाई से रोक रही है कि नहीं, नमाज खुशू सिखा रही है, नहीं कुछ भी नहीं। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले क्या चीज़ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। पहली चीज इस्लाम की बुनियादों में पहला रुकन, उसका ईमान कहते हैं, शहादत, शहादतैन भी कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, असल में इसी बात की अदायगी का नाम है। अब आप देखते हैं कि जब हम कलमा पढ़े, और अभी कोई आए अल्लाह करे कि जी इसने मुसलमान होना है, तो हम कैसे अराब के साथ उसको कलमा पढ़ाएंगे? ये नहीं कहेंगे अशहदु अशहदु, अराब निकालेंगे कि कहीं हा की जगह हा ना निकल जाए, इसके इस्लाम ही ना बदल जाए, ऐसे है ना। लेकिन कलमे की स्पिरिट क्या है, कलमे की रूह क्या है, कि इस कलमे के जरिए एक बंदा अल्लाह ताला की हर खूबी का इकरार करता है, अल्लाह ताला के कमाल का इतराफ करता है, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत का इतराफ करता है कि मखलूक में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊपर है, और खालिक होने के नाते अल्लाह ताला सबसे ऊपर है। जब आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का सही मुकाम आ जाता है, तो आपके कलमे की रूह है। और जिस बंदे ने हकीकत का ये कलमा पढ़ लिया, फिर वो कभी भी दूसरों से ना मरूब होगा, ना दूसरों की तरफ झुकेगा। वो कहेगा मेरा अल्लाह है, मेरा रसूल है, जब अल्लाह और उसका रसूल है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। चलिए इसको तो शायद हम इतना ना समझे, नमाज की बात करते हैं। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? जैसे अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे अजान होगी और हम सारे नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे। तो सलात स्पिरिट क्या है? 5 वक्त दिन में हमें हमारे कामों से फारिग किया जाता है, नमाज पढ़ो। अच्छा, अब नमाज की एक जाहरी सूरत होगी, हम सब एक ही तरह पढ़ेंगे, देखिएगा। हम सब पहले वजू करेंगे, वजू भी एक ही जैसा होता है। फिर नमाज के लिए हम सब का मुंह किबले ही की तरफ होगा, हम सब पहले सीधे खड़े होंगे, पांव सीधे रखेंगे, फिर अल्लाह अकबर कह के, सुभानक अल्लाह कह के नमाज शुरू कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद अल्लाह अकबर कह के हम रुकू में जाएंगे। यानी कमो बेश 19-20 के फर्क के साथ हम नमाज सब एक ही तरह से पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बड़ी बात है, हम में से कोई ये नहीं करेगा कि नमाज के नाम पर वहां जाकर तो वो अल्लाहू अल्लाहू शुरू कर दे, किसी के आगे झुकने लगे। नमाज एक ही तरह है, लेकिन इसकी रूह क्या है? तवाज़ो, इल्लल खाशेईन। नमाज आपके अंदर तवाज़ो पैदा करती है। जब नमाज पढ़ने के दौरान हम रुकू करते हैं ना, तो हम अपनी अक्ल, अपने दिमाग को अल्लाह के आगे झुकाते हैं। फिर जब हम सजदे में जाते हैं ना, तो हम कहते हैं अल्लाह मुझे अब तेरे सिवा कोई नहीं दिख रहा, मैं जमीन पे नाक रगड़ूंगी, मैं सजदे लगाऊंगी कि तू मेरा घुमंड खत्म कर दे, मेरा गुरूर, मेरा तकबर खत्म कर, और मेरे अंदर से ना निकाल दे, मेरे अंदर से बिल्कुल ईगो निकाल दे। और जब अल्लाह तेरा कोई बंदा मेरे सामने आएगा ना, तो मैं उसके सामने बड़ी तवाजो का इजहार करूंगी। सच बताइए, तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान है आज। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग तलवारें निकालते हैं। कल भी किसी ने मुझे कहा कि बैक होम में कत्ल कर दिया किसी ने किसी को, छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, ये हुआ। ऐसी आम बातें देहातों में, इसने किसी को कह दिया, खेतों में किसी ने किसी को कुछ कह दिया, रात को उन्होंने बंदे भेज के बंदा मरवा दिया। कहाँ है हमारे अंदर आज से? इबलीस बेचारे का क्या कसूर था? अल्लाह के आगे तो उसने सैकड़ों सजदे किए हुए थे, एक सजदा जो आदम को कहा था वो नहीं किया। यानी इबलीस अल्लाह के आगे झुकता था, बंदे के आगे तवाज़ो नहीं इख्तियार करता था। आज हमारा नहीं ये हाल, अल्लाह के आगे रो रो के हमारी आंखों से निशान पड़ते हैं, घट्टे पड़ जाते हैं, माथे पे निशान पड़ते हैं, हम बड़े हाजी नमाजी बनते हैं। लोगों ने हमें मारूफ किया होता है कि ये जी 5 नहीं 7 नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन घर में आते ही गुस्सा, बीवी के साथ झगड़ा, सिर्फ खाने में 19-20 होने पे, जरा से बच्चे मासूम बोलते हैं तो डांट करके रख दिया। आप गुजर नहीं सकते उस घर के आगे से क्योंकि ये इमाम साहब का घर है जी, आप उनकी गाड़ी को टच नहीं कर सकते क्योंकि जी ये आलमे दीन है। कभी कभी हर एक ऐसा नहीं होता, ये वो होते हैं जिनके अंदर रूह नहीं होती। जितना आपके अंदर दीन आएगा, सॉफ्ट लोगों से मिलिए, घुलिए, स्माइल दीजिए, आप उन्हीं जैसे बने। अब आप टिमने पे चढ़ के बैठ जाएं तो दूसरे लोग तौरी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे ना। आज हमारे साथ ये होता है, जो जितना दीन में आगे जाता है वो उतना करता है। और मैं अक्सर साथियों को देखती हूँ, माशाल्लाह नया नया ईमान बड़ा प्यारा होता है, छोटी छोटी बात पे फतवे दे के आ जाते हैं, लड़ भिड़ के घर आ जाते हैं। तो मैंने कहती हूँ अभी आपका इल्म थोड़ा है, कोई ऐसा ही मामला था तो छोटी सी बात पे ऐसी बेकार बातें, जिस तरह बच्चों वाली बातें होती हैं उस पे दिल मैले हो गए। तो मेरे तक किसी की बात पहुंची, मैंने कहा मुझे ले, शायद मैंने घड़ी देखकर 40 से 50 सेकंड में मामले को खत्म करके मैंने कहा चले बस खत्म, इसको बंद कर दें। बाद में जो हमारी कोऑर्डिनेटर थी, उनका मुझे मैसेज आया, कहेंगे आपने कितनी खूबसूरती से इतना बड़ा इशू खत्म कर दिया। मैंने कहा रिड़कने से क्या निकलना होता है, आपको था कि गजवा तबूक के सफर में कुछ बदगुमानियां हो गई थी आपस में तूतकार, इसी तरह गजवा मुरासी जिसको गजवा बनु मुस्तलक भी कहते हैं, उसमें तो और ही बड़ी जबरदस्त बातें हो गई अब्दुल्ला बिन उबई से। फिर इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका की ये ऊपर एक तोहमत लगी मुरासी में। नबी सल्लम क्या करते थे जब देखते ना कि आपस में खटपड़े, मतलब हम अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं मतलब 3 बसों में आपको सबको लेके चला जाए किसी जगह घूमने फिरने कि चले घूमने जाते हैं, हो सकता है वहां कोई मामला बिगड़ गया, अल्लाह के नबी ने सबको कहा सवारियों पे बैठो। आप आम तौर पे 2, 3, 4 घंटे के बस स्टॉप लेते थे, वो सफर जिसमें कुछ तू तू मैं हुई आप शायद मुझे भूल ना जाए 9 घंटे या 14 घंटे मुस्तकिल चलते ही रहे क्यों कि जहां बैठेंगे इन्होंने फिर वही पोटला खोल के बैठ जाना है। इतना लंबा सफर कराया और जब देखा ना कि अब ये नींद से मत्तू हो गए हैं तो कहा रोको चलो चुप करके सो जाओ, जब सो गए दिल साफ हो गए, सुबह उठे दिल साफ। ये चीजें आपको नमाज सिखाती, आप ही आपको लोगों से डील करना नहीं आता। मैं कहती हूँ आपने कोई जायदादें बांटनी है, एक बंदा ये कह रहा है आप वही कही जा रहे हैं, आप भाई इस ओके करना है नहीं करना नहीं करना इस ओके आप ये नहीं करें वो करें अच्छा बाकी बातें कल करेंगे अभी आप बंद कर दें, दैट इज द थिंग। हम नए नए बड़े बनते हैं ना वो जैसे कहना चाहिए लीडर इंचार्ज, लफ्ज इंचार्ज ही हमारे अंदर हवा भर देता है, मैं इंचार्ज हूँ फिर मेरी मर्जी मानेंगे, मैं कैसे इंचार्ज हूँ मैं अपनी मर्जी मान नहीं सकती। कोई कहता है मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने घर में दौरा कुरान कराऊंगी, मैंने कहा आप डिसाइड नहीं कर सकती, आप सिर्फ चॉइस दे सकती हैं, आप एक प्रपोजल दे सकती हैं, डिसाइड कोई और करेगा आप पे। हाँ 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 ये तो मैंने गलत बोल दिया, यानी तरबियत है वो चीज जिसकी कमी है। मस्जिदें अलग हो जाती, इदारे अलग हो जाते, आज दीन के नाम पे 2 गिरोह इकट्ठे कल अलग, वजह क्या है कि आजजी नहीं है। हम पूरी कॉज खत्म कर देते हैं सिर्फ ये कि मुझे कह दिया मैंने नहीं करना काम, इनके साथ नहीं मैंने करना, अगर ये है तो मैं नहीं हूं, मैं हूं तो ये नहीं हूं, हर वक्त इट पटक्का लगा के बैठते हैं। कभी आप सोचिए तो सही जितने मुसलमान आज हम हैं, जितनी मस्जिदें हमारे पास, जितने कुरान छपते हैं, जितनी हमारे पास माशाल्लाह लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया हुआ है। बड़े अच्छे उस्ताद हैं तो उनकी बात याद आ गई, वो कहते थे बैंकों पे लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते जितना एक मौलवी की बात पे ट्रस्ट करते हैं। बैंक वाले इतने इश्तेहार लगाकर बांटेंगे क्या करो हमारे से इन्वेस्ट करो ये करो, फिर कोई 10 लोग उठेंगे तो एक जोरदार तकरीर करने वाला आता है $10,000-15,000 एकदम रेज करके चला जाता है। लोग दीन वालों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको पता है कि ये हमारा पैसा जाया नहीं करेंगे, चलो हमारी आखिरत बन जाएगी, बड़ी ताकत होती है। लेकिन याद रखिए अगर आप इंसान दोस्त नहीं है, अगर आप ये कहते हैं ना मेरा फुलां के साथ गुजारा ही नहीं है, मैं नहीं रह सकती अब इस घर में, ये रहेंगे या मैं, मियां बीवी के झगड़े क्या है यही मसले हैं, अब मैं नहीं रह सकती, सास बहू का झगड़ा क्या है यही है, जो नमाज 5 दफा दिन में सिखाती है कि सर सजदे में रखकर नाक की लकीरें निकालो और बोल दो कि मेरे मालिक तू जो कहेगा मैं करूंगी, इसको खुरचने के लिए नमाज पढ़ते हैं। हम कहते हैं ठहर तो जरा नमाज पढ़ के आती हूँ, और ही प्लान करके आते हैं दिमाग में फ्रेश माइंड से कि मैंने जवाब क्या दिया था, और कई बातें याद ही हमें नमाज में आती है। कई लोग कहते हैं पहले सजदे में गई तो ये याद आया, दूसरे में गई तो ये आया, पता नहीं वो क्या था, का फिर नमाज पढ़ो फिर याद आ जाएगा। याद रखिए हमारा दीन बड़ा प्यारा, दीनदार सबसे खूबसूरत इंसान होता है, मलाई रोहमा बैनहुम जिसको आप कहें फबिमा रहमत मिनल्लाह लिंत लहुम वलो कुंत फज्जन गलीज़ल क़ल्बी लन फद्दु मिन हौलिक, आपके गिर से छट जाते सारे अल्लाह के नबी अगर आप सख्त जुबान होते बद जुबान होते, बोलिए वहां जहां आपके बोलने की जरूरत है, नहीं तो खामोशी बहुत बड़ी जुबान होती है, खामोशी की जुबान याद रखिए बोलने की जुबान से ज्यादा मुअसर होती है। तो नमाज आपको मुझे सिखाती है कि जब रब के आगे झुके हो तो बंदों के आगे भी झुको। एक मौके पे अबू जर गफारी ने हजरत बिलाल को इतना कह दिया ओ काली माँ के बेटे, काली माँ के बेटे, अल्लाह के नबी के कानों ने सुन लिया, आपने कहा कि या अबा जर्रिन ए अबू जर आपके अंदर अभी जाहिलियत की कोई रमक बाकी है वरना आप ऐसा ना कहते। बस ये सुनने की देर थी तो अबू जर गफारी पीछे पीछे चले क्योंकि हजरत बिलाल वहां से उठकर जा चुके थे, हम होते ना तो हम और जाके लड़ते इधर आओ तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी है, नहीं वहां खड़े कर रुको बिलाल रुक जाओ क्या हुआ, जाकर उनके आगे जमीन के ऊपर अपना सर रखा अपना मुंह रख के कहा जब तक मेरे मुंह पे अपना पाँव नहीं रखोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा कि मैंने तुम्हें कहा क्यों। तो हजरत बिलाल ने क्या कहा कि मैं उस माथे पे कैसे पाँव रखूं जो दिन में 5 बार रब के आगे झुकता है, यह है नमाज की रूह। हम तो कुंद छुरियां बन के नमाजें पढ़ते हैं, हमारी तो आकड़ ही नहीं कम होती, और नेक होंगे और आकड़ेंगे, हर पहले रोजे में हम थोड़े नेक, दूसरे रोजे में हम और अकड़ेंगे। वो जैसे कलफ लगा दे ना कपड़े को, तो अकड़ता ही जाता है। हमारी इबादत हमें अकड़ देती है, नबी की इबादत में आजजी थी। अगर आप इंसान दोस्त नहीं है, अगर आपको लोगों से प्यार नहीं, लोगों को आपसे प्यार नहीं, तो माजरत है, ये आपके दीन का नक्स है। चलिए आगे चलते हैं। ज़कात हम सब देते हैं, रमजान में भी देते हैं, पहले भी देते हैं, देनी भी होती है। अब ज़कात की एक ज़ाहरी सूरत है 2.5%। हर वो माल जो एक पूरा साल आपके पास पड़ा रहा, उसमें से 2.5 दे दें। जेवर है तो जेवर दे दे, फलां है तो दे दे। अब ये तो होगी ज़कात। अच्छा, हम उसी में उलझे रहते हैं, नए सोने की कीमत के पुराने सोने की। डोरियां काट के वजन करना है कि डोरी समेत करना है, नगों समेत वजन करना है कि पुराने नगों के। अच्छा, फिर हम उसमें भी बड़ी डंडियां मारते हैं, नहीं ये मेरा तो नहीं है, तो मैंने बेटी को देना है, क्योंकि निसाब के ऊपर आएगा तब जब सारा है। तो मैंने तो ये 2 तोले उसको देना है, 1 उसको देना है, 2 उसको देना है, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर ज़कात तो अब नहीं हुई ना, क्योंकि उनके पास किसी के पास भी निसाब का नहीं। क्या बातें हैं। वो कहते हैं ना कि अंधा बांटे शरीनी बार बार अपनों को। इस पे एक बड़ा प्यारा वाक्य हमारे एक उस्ताद थे, वो सुनाया करते थे, मुझे याद नहीं, लेकिन खुलासा उसका यही था कि बंदा अल्लाह को भी हाथ दिखाने से नहीं चूकता। अच्छा, अब ज़कात के झगड़े, ज़कात के मसले, ज़कात शोहर दे के ना दे, फुलां दे ना दे, मस्जिद को ज़कात लगती है कि नहीं, दीनी इदारों को लगती है कि नहीं, ये ज़ाहरी बातें हैं। हम या तो ज़ाहिर पे अटकते हैं या फिकी बहसों में अटकते हैं। हालांकि ज़कात की रूह, जैसे इस फोन की रूह क्या थी, सिम और वाईफाई कोड, सब चीजों को उसी पे लेके चलेंगे। ज़कात की जो असल रूह है ना, वो खिदमत है। जो आदमी ज़कात दे देगा, वो अल्लाह के बंदों की खिदमत करने का इकरार करता है। और खैर ख्वाह सिंसेरिटी होती है कि मैं इस दुनिया में दूसरों को नफा दूंगा, अल्लाह ने मुझे 100 दिया है, तो चलो 97.7 मेरा, तो 2.5 तो किसी को दूं, 2.3 दे दूं, जितना दे दूं, ये मेरे माल का एक सदका है जो मैं दूसरों को दे रहा हूं। अब मुझे सच बताइए, जो बंदा अल्लाह के कहने पे 100 में से 2.5% दे देगा, तो वो जो पीछे 97.5 रह जाएगा, उसके बारे में क्या कहेगा? हाथ न लाना, नजर न भरना। और हम क्या करते हैं, उसी 2.5 में सारे खर्चे पूरे करने होते हैं। अच्छा, फलां रिश्तेदार को इसमें से लग जाएगी, अच्छा माँ बाप को लग जाएगी, भाई बहनों को, अच्छा वो मासियों की बच्चियों की शादियां भी इसी में करें, अच्छा नॉन मुस्लिम को भी हम उसमें दें। जब लोग मुझसे ये सवाल कभी पूछे ना कि ज़कात के माल में ये लगता है, कोई कहता लगता है, कोई कहता नहीं लगता, क्या करें, तो मैं उनको अक्सर पूछती हूँ कि ना दें, आप क्यों दे रहे हैं ज़कात का माल, जहाँ आपका दिल मानता है। मिसाल है, झगड़ा करते हैं लोग कि जी दीन के काम पे मदरसों पे ज़कात लगती है कि नहीं। आप जिस मस्जिद में जाते हैं, वो इमाम साहब क्या कहते हैं कि नहीं लगती, नहीं देना चाहिए, और आप उन इमाम साहब पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो आप ना दीजिए 2.5। वो 97.5 में से आप मदरसे वालों को बेचारों को 1% दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए ना, आपके 100 रोटियां, 2.5 रोटियां आपने तो दे दी मारे बंदे, तो 97.5 आपने खुद खानी है। ज़कात आप देंगे ना, तो ये कभी हो नहीं सकता आप सदका ना दें। ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपके बैंक में पड़ा है और अल्लाह के दीन को जरूरत है, आपके बैंक में पड़ा है और आपके सगे भाई बहनों को जरूरत है, आपके बैंक में पड़ा है और आपकी बिरादरी में कईयों की इज्जत खराब हो रही है, सिर्फ 2-3 लाख रुपए किसी को ना वापस कर सके। मैं अक्सर इस चीज पे सोचती हूँ और मैं कहती हूँ, अल्लाह ताला ये बात जब समझ आ जाएगी ना, तो सारे बैंक बंद हो जाएंगे और तेरा ही बैंक खुला रहेगा, जिसको आखिरा बैंक है। आप देखिए कि बैंक, आप जरा से इस कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि इंजॉय करें, क्योंकि रमजान में सदका खैरात भी बहुत होता है। हम खुद हर वक्त स्कूल के प्रोजेक्ट्स में से गुजरते हैं, आजकल तो हम एक ऐसी फेज से गुजरे हैं, मैं इतना को इंजॉय कर रही हूँ कि जिंदगी में कभी नहीं किया होगा, कि जिसको आप कह सकते हैं कि जो दुआएं मांगी होती हैं अल्लाह वो पूरी करने के वक्त ले आता है, कि पहले मैं तो अपना आप खाली करूं, फिर मैं किसी के ऊपर नजरें लगाऊं। मुझे क्या, मैंने क्यों रखना है घर में अपने चीज को, क्या पता चोरी ले जाए आके। लेकिन जो बात मैं करना चाहती वो क्या है कि अब हम रमजान में ज़कात देंगे, फिर 2.5% देंगे, तो 97.5 बैंक में रखेंगे, फिर बैंक में रखेंगे तो आपसे वो टैक्स मांगेंगे, फिर बैंक वाले आपसे पूछेंगे ये काला पैसा, गोरा पैसा, पीला पैसा, नीला पैसा। और फिर जब आप लेने जाते हैं, आजकल जिधर भी बैंकिंग है ना, खास तौर पर जब से कोरोना और ये सारी सेटअप हुए, आपको तो पूरी दुनिया की बैंकिंग लिमिटेड होती जा रही है। आप यहाँ का तो मुझे कुछ पता भी नहीं है, लेकिन पाउंड एक काफी बड़ी अमाउंट है करेंसी वाइज। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी के हस्बैंड या आपके अपने बैंक में अगर बिल फर्ज 20,000 पाउंड है, तो आप अभी फौरन जाएं और उस बैंक के काउंटर पर खड़े होकर के मेरे 20,000 मुझे वापस कर दो। देंगे वो, लिमिट होगी शायद आपको, वो 1,000 पाउंड एक वक्त में निकालने दें, 2,000 निकालने दें, 5 निकालने दें, सारे तो नहीं फौरन देते ना, संडे को बैंक बंद होंगे, बल्कि दुनिया में लिमिट लग गई कि बस जी आप 100 पाउंड ही निकाल सकते हैं, 500 पाउंड निकालें फिर आप दूसरे कल निकालिएगा, ऑल्टरनेट डेज पे निकालिए। जिस बैंक ने इतनी लिमिटेशंस लगाकर आपका पैसा रखा है और सारा साल वो आपका पैसा इस्तेमाल करते हैं, आप उन पे इतना ट्रस्ट करते हैं, क्या पता आपको इतनी बड़ी जरूरत पड़ जाए पैसे की, लेकिन उस दिन संडे हो और बैंक बंद हो, फिर आपको नहीं मिलना। हो सकता है आप दुनिया से जा रहे हैं लेकिन बैंक आप पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन आप फिर बैंक को ही देते हैं, तो वो मालिक जिसका बैंक कभी बंद नहीं होता, अलाखिरा अनलिमिटेड अकाउंट। दुनिया का हर बैंक लिमिटेड है, हबीब लिमिटेड बैंक, अलाइड लिमिटेड बैंक, अल्लाह का अनलिमिटेड बैंक है। हम सब अपने अपने अकाउंट के अंदर एक झांक डालकर देखें, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरे पास सोना कितना है, मेरे पास चांदी कितनी है, मेरे पास कपड़े कितने हैं। आपको ज़कात की 2.5% रेशियो से अल्लाह ने ये सिखाया था कि 2.5 मैं मस्ट कर रहा हूँ और 97.5 में से अफ के दर्जे पे रखकर, अपनी ज़रूरत को इस्तेमाल में लाने की चीज़ों पे रखकर, बाकी तुम अपनी खुशी से इस्तेमाल कर लो। ये रूह थी ज़कात की। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लम ने सारी जिंदगी ज़कात नहीं दी, सुनी भी है ये बात, अल्लाह के नबी ने कभी ज़कात नहीं दी। आप कहेंगे अस्तग़फिरुल्लाह, वजह एक साल पूरा तो रहा ही नहीं माल पास, इधर से आता था उधर जाता है, आप कहेंगे आता ही नहीं होगा, कितना आता था आप पढ़कर देखें अल्लाह के नबी के इकोनॉमिकल मैटर्स, अबू बकर के पास कितना आता था पढ़कर देखिए, अब्दुलरहमान बिन औफ को देखिए, आता था रुकता नहीं था। आप देखिए टनल, युनफिकून, नफका, इनफाक, एक अलिफ हटा दें, इनफाक का अलिफ उठा दें तो निफाक बन जाता है, यानी इनफाक का ताल्लुक निफाक से, जहां निफाक होता है वहां इनफाक नहीं होता, वहां स्पेंडिंग इन द पाथ ऑफ अल्लाह नहीं होती। तो हमारा तो हाल अल्लाह माफ करे है कि जिसकी अपनी नहीं पूरी पढ़नी उसने दूसरों को क्या देना है, ऐसे ही है ना। खैर इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। हज, हज की स्पिरिट क्या है, साल के कुछ मखसूस दिन है, हम सब जानते हैं जिलहज की दिन शुरू के, खास जगह पे खास मुकाम पे पहुंचकर कुछ रिचुअल्स को अदा करने का नाम हज है। अल्लाह नहीं जो गए उनको भी ले जाए, जो गए उनको बार बार ले जाए, सब कोई पता है। मैं और आप यहाँ ब्लैकबर्न में हज तो नहीं कर सकते ना, लेकिन एक मासी कर सकती है। ये भी इस पाकिस्तान के ट्रिप में मुझे वाकई पता चला कि एक बाजी है, तो वो कह रही है कि मेरी मुकाम वाली आई, कहती बाजी मैंने छुट्टी चाहिए है, कहने लगी कि क्यों क्या करना है, किधर क्या मसला है, कहती बाजी असी सारे हज ते चले हैं। तो उसने कहा कि हज ते चले हो, हज तो बंद है और आजकल तो हज का सीजन भी नहीं। कहती नहीं बाजी सऊदी अरब नहीं चले, उत्थे ते अमीर जाते हैं, असी ते गरीबां वाला हज, साडा हज ते साडे पिंड च होंदा, कित्थे पता चला, गांव से थोड़ी दूर ना कोई मजार है, तो बस करा के खानदान के करीबी लोग वहां, कहती असी उत्थे 10 दिन जा के कबर दे चक्कर भी लाए दे, ते साडा ते हज इत्थे, असी कित्थे उत्थे जाना। अल्लाह हू अकबर कबीरा, जहालत की हद देखिए। और छुट्टी लेने आई तो पता चला कि ये काम क्या होने लगा, कहती हम हर साल जाते हैं बाबा जी दी कब्र है उधर जाके, फिर कहती करते क्या, कहती सी सारा कुछ वही करते जेड़ा लोगी उत्थे जाके करते। अब मुझे बताएं कि जिसने पढ़ा लिखा नहीं वो कोई गुनाह का काम करने जा रही है, वो तो सवाब करने जा रही है, चलो उधर नहीं तो इधर ही कुछ कर ले। अब ये तो है जाहिरी स्पिरिट, लेकिन असल में हज क्या है, ये देखिए यूनिटी, इत्तेहाद। जो आदमी सही रूह के साथ एक हज करे, इसलिए आपको तो हज सिर्फ एक ही दफा फर्ज है, एक हज का फर्ज अदा करेगा उसके अंदर से इख्तलाफी नफ्सियात खत्म हो जाएगी, उसके फिरके टूट जाएंगे, उसकी जमातें खत्म हो जाएंगी, वो कहेगा अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो ये नहीं कहेगा तेरा फिरका तेरी जमात, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, उस बंदे का मिजाज इत्तफाक और इत्तेहाद का मिजाज हो जाएगा, और उस वक्त भी जब दूसरों से उसका इख्तलाफ होगा वो फिर भी उस वक्त इत्तेहाद की बात करेगा। सच बताएं लगता है हर साल इतने लोग हज करने जाते हैं, पिछले शायद 2 साल में अल्लाह ने रखवा के घरों में तौबा का मौका दिया कि तौबा करो वरना पैसे जाया हो रहे हैं तुम्हारे, यहां से भी मेरे हले जाएं तो 10,000 पाउंड तो लगता ही होगा हज में, इससे भी ज्यादा शायद पैसे जाया करके आते हैं अगर रूह नहीं है। चलिए उसको भी छोड़ें, आखिरी चीज जिस पे जो हमारा मौजू है वो है सौम, सौमे रमजान, रोजे की क्या हैसियत है, वही फोन और उसकी मिसाल रखिए। रोजे की एक असल शक्ल है। सुबह सूरज तुलू होने से पहले, फजर से पहले लेकर मगरिब तक कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, उसमें खास ताल्लुक शोहर बीवी का, उसके करीब नहीं जाना। ये दो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, ईमान की हालत में ये चीज है। तो रोजे की जो जाहरी शक्ल है ये है वही ढांचा, लेकिन असल रोजे की स्पिरिट क्या है? सब्र, बर्दाश्त। इंसान के अंदर सब्र की स्पिरिट हो, जो रोजा रखे उसका मिजाज सब्र वाला हो। इन्नी साइमतुन या इन्नी साइमुन कहने वाला हर नाखुशगवार बात को बर्दाश्त करे, और जूं ही लोग उसके सामने शिकायतों का पलंदा लेकर आए ये ओवरलुक करे। याद रखिए, इंसानों की इस दुनिया में आप और मैं अकेले नहीं है। अभी आए आप कहेंगे रोड पे कोई दूसरी गाड़ी नहीं होगी ना, फिर मैं जाऊंगी वापस, तो फिर इधर ही बैठे रहिए, या फिर लॉकडाउन होगा या कर्फ्यू होगा। इंसानों की इस दुनिया में हमें लोगों के साथ चलना है, शिकायतें भी होंगी, गिले भी होंगे, इख्तलाफ भी होगा। आपके चेहरे पे देखिए, आंखें भी हैं, कान भी हैं, जुबान भी है। एक इतने से फुटबॉल के अंदर अल्लाह ने मुख्तलिफ पुर्जे लगा दिए। क्या आंख और जुबान एक ही काम कर रही है? एक ही इसकी सारी कुछ, कोई चीज नहीं मिलती। हाँ, सब लगी एक ही जगह। इंसानों की इस दुनिया में वही लोग कामयाब हैं कि जो दूसरों से उनकी खैर लेने के काम में माहिर होते हैं। तो रोजा आपको मुझे ये सिखाता है कि इंसानों की इस दुनिया में इंसान दोस्त बनो, अपने अंदर सब्र लाओ। कोई बात नहीं, शौहर की एक बात नहीं पसंद दूसरी देख लो, बीवी की एक बात अच्छी नहीं लगती आसान तक रहो शयन व हुआ खैरुल लकुम। बीवी से बच्चे तुम्हें अच्छे मिल जाएं, वो बीवी तुम्हारे और कितने काम करती है। हजरत उमर कहा करते थे कि मैं उस औरत से कैसे लड़ूं जो मेरी धोबन भी है, मेरे कपड़े धोती है, वो मेरा खाना भी पकाती है, मेरी ख्वाहिश भी पूरी करती है, तो क्या अब मैं उसकी इतनी खूबियों के जवाब में उसकी छोटी सी बात पे अकड़ने लग जाऊं? तो क्या पता चला कि हमें हकीकत में अपने इस दीन को उसकी असल शक्ल और उसकी रूह के साथ लेना है। जब कौम पे जवाल आता है जिससे आप गुजर रहे हैं, तो इख्तलाफात, जमातें, गिरोह, मसलक, नाम, फिरके और 200 चीजें और डाल लें जो दिल चाहे, लेकिन इस्लाम नहीं होता। जरा से हाथ ऊपर करके कोई इस्लाम करके नमाज शुरू कर देगा ना, तो इस पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन वो नमाज के दौरान आजजी थी कि नहीं, सर अल्लाह के आगे झुका कि नहीं झुका, हमें नहीं पता। और ये होता है उस वक्त जब बिल्कुल जाहरी दीनदारी की धूमधाम होती है, नारे हैं, धरने हैं, दीन के नाम पे बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन आज हम इस्लाम की उस शक्ल में नहीं नजर आते। आज हम रोजा रखते हैं लेकिन हमारे अंदर रोजे की वो चीज, एक मौसमी रोजा है हमारा, सब्र नहीं है। छोटी छोटी बात पे इश्तियाल में आ जाते हैं, मुश्तिल हो जाते हैं, इसलिए कि लोग रोजा तो रखते हैं लेकिन उनके दिल और दिमाग में इस रोजे की स्पिरिट नहीं आती। आप सिर्फ इन 5 चीजों में, जिसको मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा रोजे के साथ बाकी भी चीजें बता दूं, क्योंकि रोजे से पहले कई चीजें आती हैं, आप देखेंगे जब इसको इख्तियार करेंगे ना, तो दुनिया में रहमत और आखिरत में जन्नत मिलेगी। अल्लाह ने जन्नत नाम की एक बड़ी खूबसूरत सी जगह आबाद की है। आप मैं 5 बड़े बड़े ये तकाजे दीन के पूरे कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने सारे वादे पूरे करेगा, पूरी जन्नत मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ अधूरी ना हो। नमाज पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ें। आज से कम अज कम आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने अपने कलमे पे गौर करना है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल की गहराई से कह दिया, फिर उसको किसी और की जरूरत नहीं। कम अज कम मुझे तो किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि हसबी अल्लाह। अपने आप को यूं कहा करें, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़ी नबदा, हसबुनल्लाहु नेमल वकील। कहीं वाहिद के सीगे हैं, कहीं जमा के सीगे हैं, कहीं सवालिया अंदाज है। आज हमें वो कहते हैं ना, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउम्मीदी है। वजह यह कि हम कलमे की रूह को नहीं लेते। तो इंशाल्लाह इस साल के जो रमजान के रोजे हमने रखने हैं, हर रोजे के अंदर उसकी रूहानियत को सामने रखें। आप देखेंगे मोमिन और मुस्लिम और इस तरह मोहसिन बनने का नुस्खा ही ये है कि अल्लाह जिस काम को करने का आपको मौका दे वो करें। आप जो रोजे रखेंगे भी इस साल रमजान में, और कुछ लोग रोजा रखते हैं कुछ रोजा नहीं रखते, और कुरान भी कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कब्लिकुम अय्यामा मादूदात। गिनती के चंद दिन है, जो बीमार हो जाए, सफर पे चला जाए, वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। और कई जगहों पे रोज़ा माफ़ भी कर दिया गया। और कुरान के अंदर जहाँ रोज़े की बात आती है वहाँ कुरान की बात है और दुआ की बात है, पूरी इबादत। जैसे मिसाल है नमाज का जिक्र कहते हैं 700 बार, रोज़े का जिक्र कुरान में बस एक ही टुकड़ा है, 183 अल बकरा के कुर्बो जवार में तकरीबन एक रुकू पूरा रोज़े से मुतल्लिक है, और उसी में दुआओं की बातें हैं, और फिर उसी में शौहर बीवी के ताल्लुक के लिए बड़े खूबसूरत अल्फाज बोल दिए, हुन्ना लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लकुम, उसी में इतिकाफ की बात कर दी। ये सारी बातें करके अल्लाह ताला आपको मुझे क्या बताना चाहते हैं कि रमज़ान को सालाना ट्रेनिंग सेशन बनाओ। आज से नियत कीजिए कि अल्लाह 2022 का रमज़ान मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बन जाए। इसमें मुझे सब्र भी सीखना है, शुक्र भी सीखना है, बर्दाश्त भी सीखनी है, और अल्लाह के वजूद का एहसास सीखना है, तकवा भी सीखना है। खाने पीने से भी रुकूंगी, लेकिन ये आखिरी चीज़ है इसमें, तो मैंने असल में तेरी नाफरमानी से रुकना है। और आप देखेंगे कि इस रोज़े के बाद आपकी ज़िंदगी में ना एक चेंज आएगी, कि मेरी ज़िंदगी एक पाबंद ज़िंदगी है, मैं एक बेकैद शुतर बेमुहार इंसान नहीं हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।